शरण शरण प्रभुले
ओम शरण 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 प्रभुले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरु राखहिं जो को पविधाता वचन प्रतीतन जाई
गुरु के वचन प्रतीतन जाई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
हम भजन क्यों करते हैं? तो हम भजन क्यों करते हैं? हम अपूर्ण हैं, हम अल्पजीवी हैं, सब कुछ होते भी कुछ नहीं है। एक दिन सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, सारी समृद्धि यहीं एकदम ज्यों की त्यों छोड़ के आगे बढ़ जाना होता है, अगले पड़ाव पर, अगली योनि पर, इसलिए भजन किया जाता है। अनंत जीवन, शाश्वत शांति, वैसा धाम की जिसमें मृत्यु न हो। भगवान कृष्ण कहते हैं स्थानम प्रापशी शाश्वतम। अर्जुन, परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है, इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग देखते क्यों नहीं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रम बस भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। तो ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्सी शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। थोड़ा सा भाव बिंदवासिनी, थोड़ा का भाव मैहर, थोड़ा सा पशुपतिनाथ, थोड़ा सा वैष्णो देवी, हम तो बारह आने लीकेज हो गए। संपूर्ण भाव से उसकी शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी और शरण चले ही गए तो लाभ क्या? तो तत्पश्चात परम शांति, तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। उस स्थानम प्राप्सी शाश्वतम, उस घर को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम रहोगे और तुम्हारा धाम रहेगा, प्रतिवर्ष चूना नहीं पोतना पड़ेगा, अविनाशी में खरोंच नहीं लगती। वो है इस आत्मा का शुद्ध धाम परमात्मा, आप ही का छिपा हुआ स्वरूप, सदा रहने वाली समृद्धि, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला निवास और शांति। इसी पूर्ति के लिए भजन किया जाता है। भजन करने में प्रमुख चार पॉइंट है, नाम, रूप, लीला और धाम। पहला है ईश्वर चिंतन का सर्वोपरि उपाय, नाम जप। भगवान अमूर्त है, अनाम है, अनिर्वचनीय है। तो वाणी से हमने राम राम कह दिया, नाम हो गया? नहीं, उन प्रभु का कोई नाम पूर्ण तो होता ही नहीं। वो कण कण में व्याप्त है, तो सारे ऐश्वर्यों से युक्त है, तो विभु व्याप्त है, तो ब्रह्म भरण पोषण करता है, तो प्रभु अंतःकरण के अंतराल में निवास है, तो आत्मा, और सब में रहते हुए सबसे परे है, तो परमात्मा ब्रह्म, वो ओम। ओम माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। इस तरीके से विविध दृष्टिकोण से 10,000 नाम गिन दो। विभूतियों का स्मरण अवश्य है, लेकिन कोई नाम पूर्ण नहीं। लेकिन इनमें से वो नाम सार्थक होता है जो संपूर्ण रूप से बोध कराता हो। ओम ओम आने वे अविनाशी परमात्मा, अहम अहम माने आप स्वयं जिसका निवास आपके हृदय में है। राम रमन्ते योगिने यस्मिन् से रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसका नाम राम है। जो अर्थ ओम का है वही राम का। जो सीधा परमात्मा का बोध कराता हो ऐसे किसी एक दो ढाई अक्षर के नाम का जाप करें, हमें भटकाए ना, लक्ष्य को संबोधित करता हो, उस परम प्रभु का बोध कराता हो, इंगित करता हो, ऐसा दो ढाई अक्षर का नाम वैदिक काल में ओम और भक्ति काल में राम और प्रार्थना के रूप में करोड़ों नाम, कंस निकंदन देव की नंदन, ये सब प्रार्थनाएं है, ये अनुनय विनय है, चरित्र चित्रण है। लेकिन जपने का नाम केवल दो ढाई अक्षर का एक नाम, पहले रूप आता ही नहीं। सुमरिए नाम रूप बिनु देखे, आवही हृदय स्नेह विषेके। नाम का सुमरण करो बगैर रूप देखे, सुमरण करो तो विशेष स्नेह से हृदय में प्रकट हो जाएगा। जब रूप आएगा तब तो हम ध्यान धरेंगे, इसलिए बगैर रूप देखे ही सुमरण शुरू करो, वो हृदय में अवश्य प्रकट हो जाएंगे। भगवान देखेंगे कि ये मुझे पुकार रहा है, तुरंत वो सुनवाई करेंगे। आप श्वास बाद में लेते हो, प्रभु पहले से जानते हैं कि ये क्या सोचने वाला है, वो सब सुनते भी हैं। और दूसरा होता है रूप। भगवान को हमने देखा नहीं, ध्यान कैसे धरें? वो कण कण में व्याप्त, तो में मोह में खड़क खंभ में, तो हम खड़क का ध्यान करें कि खंभ का? ईश्वर का ध्यान हम कैसे शुरू कर दें? आपको वैसे ही करना होगा जैसे अनादि काल से पूर्वज करते आए हैं महर्षिगण। भगवान कृष्ण कहते हैं, ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरण ये प्रियाति त्यजन देहम शयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका तू जाप कर और मेरा ध्यान धर। ध्यान अपना बताया, नाम ओम का। कृष्ण एक योगेश्वर थे, सदगुरु थे। अर्जुन ने पहले तो बराबर का ही माना कृष्ण को, लेकिन जब विभूतियों का दर्शन किया एकादश अध्याय में तो प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप परम अक्षर हैं, शाश्वत सत्य हैं, शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वाम प्रपन्न। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, वह उपदेश दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊँ। फिर उपदेश देके छोड़ मत दीजिए, कदाचित मैं लड़ खड़ा हूँ न चल सकूँ तो मुझे साधिए संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। संपूर्ण गीता गुरु शिष्य संवाद है। कृष्ण ही के शब्दों में भगवान कृष्ण ने जो अपना परिचय दिया तो एक सदगुरु एक तत्वदर्शी योगेश्वर के रूप में दिया। ये प्रश्न अलग। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में पहुंचे तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी, एक से एक राजा महाराजा वो दिग्गज उठे, 10-10 हजार राजा उठे। तो परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। कमर कस के 10 दंड बैठक लगा के एक से एक योद्धा उठे, चले इष्ट देवन सिर नाई। अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके तब चले। हम इष्ट देवों को क्यों पुकारते हैं? हम जानते हैं कि सामने वाली समस्या गंभीर है, हम अपने बल पर इसमें उत्तीर्ण हो नहीं सकते। बच्चे परीक्षा में जाते हैं सब संकट मोचन में घुस जाते हैं, जानते हैं कि मामला गंभीर है, भगवान सहायता करो। निज निज इष्ट देवों को प्रणाम किया, सुरेश महेश गणेश दिनेश सरस्वती लक्ष्मी देवी भूत भवानी जो जिसका इष्ट रहा हो। अंत लेकिन 10 हजार राजा 10 हजार ईष्ट सब ने एक साथ बल लगाया, धनुष टस से मस नहीं हुआ। तब जनक लगा सिर पीटने, तब फिर गुरुदेव ने कहा विश्वामित्र ने कि उठो राम भंजो भव चापू, मेटहु तात जनक परितापू। ई जनक का दुख दूर कर दे। विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि तोड़ दे तो क्या औरत मिलेगी, ना, इस जनक का बेचारे का दुख दूर कर दे, जनक का परिताप मिटा दो, इसे शांति प्रदान करो राम। तो सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषादन कछुरे आवा। तुरंत चरणों में प्रणाम किया, बैठो, चरणों में प्रणाम किया, सिर झुकाया, फिर गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सनयाय सुमांगा। बड़े अनुराग से राम ने चरणों में वंदन किया और राम ने मुनि श्रेष्ठ से अनुमति मांगी कि भगवान आदेश है, तो आदेश आशीर्वाद मिला। पहुंचे तो वहां पर, लेकिन धनुष को राम जी ने नहीं छुआ। छुआ कब? तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघम उठाए धनु लीना। सदगुरु को प्रणाम मन ही मन किया, बड़ी सरलता से धनुष को उठा लिया। पहले मन में गुरु महाराज के स्वरूप को पकड़ा, जब स्वरूप हृदय में आ गया तब मन से ही प्रणाम किया और धनुष उठा लिया। भगवान राम ने इष्ट का स्मरण किया, उनके इष्ट थे सदगुरु। लोग कहते हैं शंकर जी थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, शंकर जी को नहीं। अति लाघम उठाए धनु लीना। अब ये देखना कि शंकर और गुरु में अंतर क्या है। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रह सर्वत्र बंध्यते। मैं नित्य बोध में, अनित्य माने नश्वर, नित्य माने शाश्वत, बोध में सदगुरु के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरुम शंकर रूपिणम, सदगुरु ही शंकर स्वरूप है, जिनके आश्रित हो जाने पर टेढ़ा चंद्रमा सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। मन शशि चित्त महान, मन ही चंद्रमा, सबका मन बड़ा टेढ़ा, पता नहीं दिन भर में कितनी क्या क्या गणित लगाता है। ये टेढ़ा चंद्रमा प्रकृति की ओर उन्मुख, गर्त की ओर बढ़ने वाला चित्त सिमट के सीधा परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। आरंभ में तो शिव और सदगुरु, सदगुरु और शंकर, ये पर्यायवाची शब्द है। शंका अरिशय शंकर, जो शंकाओं से अतीत है वो शंकर, शिव जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है। और मानस में जब आरंभ में शुरू किया, प्रथम वंदना गुरु से शुरू की, गुरुपद नख श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम शोष प्रकाशो, बड़े भाग्य और आवई जासु। गुरु महाराज के चरण नाखून की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य, जिसका सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम शोष प्रकाशो, बड़े भाग्य और आवई जासु। वो प्रकाश हृदय में मोह से उत्पन्न अंधकार को दूर कर देता है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज का चरण आ जाए। किसी ने रगड़ की चरण को हृदय में ले लिया तो उसे लाभ क्या। तो उगर ही बिमल बिलोचन के, मिट ही दोष दुख भवर जनी के, सोज ही राम चरित मणि मानक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। इन आंखों से भगवान कभी किसी ने नहीं देखा, वो अगोचर है, तो भला इंद्रियां कैसे देख लेगी। और भवर जनी आवागमन, जन्म मृत्यु के दोष और दुख मिट जाएंगे, और रामचरितमानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी कि रामायण में तुलसीदास ने लिख क्या दिया। जैसा लिखा जैसा पढ़ता वैसा है वे नहीं। जहां मानस लिखा तो मानस देखने की कुंजी भी बताई कि गुरु महाराज के चरण हृदय में आए, आंख खुली, तब सूझ ही रामचरित मणि मानक रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। गुप्त प्रगट जहां जोजे ही खानिक, गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका वो भी विदित हो जाएगा, प्रगट हो जाएगा। प्रगट जो लिखने में आया है अथवा जो जे ही खानिक, पर ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में जो कुछ भी रहस्य छिपा वो भी विदित हो जाएगा। अर्थात मानस पढ़ने की कुंजी है गुरु के चरण, खुले आंख, फिर पैदा हो सूझ। इसलिए भगवान को हमने देखा नहीं, ध्यान धरे तो कैसे धरे। एक बार पार्वती को संदेह तो नहीं था, माता पार्वती ने प्रश्न कर दिया कि राम सो अवध निरपति सुत सो कि अज अगुण अलख गति को। राम वो जो राजा का लड़का या अलख अविनाशी कोई और? जो निरपतन है तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा निरखी, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे हुआ? फिर स्त्री के विषय में बुद्धि भ्रमित है जिसकी? पेड़ों से पूछ रहा है, लताओं से पूछ रहा, दौड़ते हुए मृगों से पूछ रहा, सीता को देखा, सीता को देखा, एकदम विक्षिप्त पागल। क्या इन पेड़ों ने पहले भी कभी बातें की थी? स्त्री के वियोग में एकदम विक्षिप्त राजा का लड़का तो भला भगवान कैसा? शंकर जी भड़क गए, कहें सुनई असे अधम नर गर्षे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख जाने झूठन साच। जो पार्वती तुमने इतना अनर्गल प्रश्न कर दिया, ऐसा प्रश्न वही कर सकता है जिसको मोह रूपी पिशाच ने गर्स लिया हो, जो पाखंडी है, हरि के चरणों से विमुख है, बातों का जिसे भूत सवार है, वो ही ऐसा प्रश्न कर सकता है। तुमने प्रश्न किया कैसे? लेकिन पार्वती जी शांत भाव से बैठी रह गई। जब माता पार्वती की शांति नहीं भंग हुई तब भोलेनाथ ने विचार किया, बात क्या है, इसके अंतराल में प्रश्न है भी कि नहीं। भोलेनाथ ने ध्यान धर के देखा और एक घड़ी में जब ध्यान से चित बाहर किया तो बोले, पार्वती तुम्हारा तो ये प्रश्न ही नहीं है। राम कृपाते पार्वती सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। न तुम्हें शोक है न मोह है न संदेह है न भ्रम है, ये तो तुम्हारा प्रश्न ही नहीं है, लेकिन समाज का प्रश्न अवश्य है। इसलिए सुनो कि राम कौन, तो आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुरूप निगम यस गावा। जन्मा कब, जिएगा कितना, ये तो कोई जिसका पाया नहीं, लेकिन वेदों ने अपने विवेक के अनुसार कहा उसको सुनो कि राम कौन, राम कैसा। तो बिनु पद चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना। बगैर पैरों के सर्वत्र चलता है, बगैर हाथों के सर्वत्र कार्य करता है, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बगैर शरीर के स्पर्श करता है, बगैर आंखों के देखता है, बगैर कानों के सुनता है। खींचिए चित्र, बुलाइए फोटोग्राफर की यहां कर रहा है खोचो को। इसलिए करोड़ों मंदिर हो सकते हैं लेकिन भगवान का चित्र, भगवान की मूर्ति तो किसी मंदिर में नहीं। शिव की उपज है रामचित मानस, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। जब पार्वती ने प्रश्न किया कि राम कौन, पहले तो बिगड़ खड़े हुए, फिर बोले, जब बोले ओ तुमने जगत के हित के लिए प्रश्न किया है तो राम कौन, तो आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बगैर बाणी के प्रकांड विद्वान बगैर मुख के सारे रस का भोगी, बगैर पैरों के चलता, बगैर हाथों के कार्य करता और सर्वत्र सब समय। अब खींचो चित्र, ऐसी परिस्थिति में बताओ हम ध्यान कैसे करें। ध्यान हमें वैसे ही धरना है जैसे भगवान कृष्ण ने धरने का आदेश दिया, जैसा भगवान शिव ने दिया, जिसका ध्यान राम जी ने स्वयं रखा। तो पूर्ति पर्यंत जो भगवत स्वरूप स्थित तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु, उनके स्वरूप को पकड़ने से, वो एक सांचा है, कुमार का डाई है, उसके अनुसार जब आपके हृदय में गुरुत्व ढल गया तो फिर सांचे को एक तरफ कर दो। गुरु ने चेला, पुरुष अकेला, लेकिन भजन की जागृति, पूर्ति पर्यंत पथ और परमात्मा का प्रवेश द्वार सदगुरु है। ये सदगुरु रहे सदैव, हैं सदैव, होंगे सदैव, लेकिन संख्या बड़ी कम रही। नर सहस्र मऊ सुनऊ पुरारी, कोवे कहो ही धर्म व्रत धारी। 1000 में से एक धर्म व्रत धारण करने वाला, धर्मशील कोटिक मऊ को विषय विमुख विराग रत हुई। करोड़ धर्मात्माओं से एक विरक्त और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहें, समय के ज्ञान सुकृति को लही। करोड़ विरक्त लंगोटी लगा के खड़े हैं भगवान की ओर मुंह करके, उनमें वास्तविक ज्ञान कोई एक पाता है और उन करोड़ों ज्ञानियों में से एक भगत। आप ही विचार करो कि तत्वदर्शी कितने हुए सृष्टि की आबादी में, 5-7। ये कोटा बड़ा कम रहा। मंत्रियों की सीट तो जब देखा सीट खतरे में तो 10 सीट और बढ़ा लिया, लेकिन भगवान ने आज तक नहीं बढ़ाया। और उन करोड़ों विरक्तों में से वास्तविक ज्ञान कोई एक लेता है, आप ही विचार करें कितने होंगे संत। लेकिन रहे सदैव, हैं सदैव, होंगे सदैव, इसलिए ध्यान के आरंभ में सदगुरु, गुरु के द्वारा हृदय में जिस परमात्मा की हमें चाहे, पहले आता है नाम, फिर आता है स्वरूप। और सचमुच सदगुरु है, आप श्रद्धा से उनके अनुसार बताई हुई साधना 4-6 महीने करते बन गई, टूटी फूटी सेवा करते बन गई, तो जिस परमात्मा की हमें चाहे और जिस सत्य पर, जिस गृहस्थी में हम बैठे हैं, वहीं वो भगवान आपका मार्गदर्शन करने लगेगा, आपको सोने से जगाएगा, कहेगा कर भजन, देख इधर, चल इधर। आस्ते आस्ते एक दिन ऐसा आएगा भगवान कहेंगे चल, या तुम्हारी ड्यूटी खत्म, ये बाल गोपाल अपने आपे पर हो गए, कर भजन। महाराज कहें हो, भगवान आदेश न दें घर छोड़ना पाप है, और आदेश दे दें तो घर में रहना पाप है। भगवान ने हमको ये कहा, वो कहा, वहां पतित होने से बचाए, वहां ये आदेश दिया, तो हमने 5-7 दिन तो प्रेम से सुना, एक दिन हमने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी क्या भगवान बातें करते हैं? तो बोले हाँ हो, भगवान ऐसे बतियाओ थे जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बतियाई, क्रम न टूटे। तो हम सोचे भूखा तो तब पति आता जब आधा शेर पेटे जाए, ये अच्छा गपोड़ा सुना दिया। 1-15 मिनट बाद बोले काहे घबड़ाते, तो हु से बतियाई है। संतोष तो हुआ, लेकिन जब बतियाए तब तो 2.5 महीने पश्चात वही जागृति हुई। हमने सोचा कोई रोग हो गया, एड़ी से चोटी तक आधा आधा इंच पर अंग फड़कने लगा, उसके अनुरूप दृश्य दिखाई देने लगे, जागने में, सोने में, हर परिस्थिति में, भजन में भी। हमने सोचा कोई बीमारी हो गई। हमने माँ गुरुदेव से प्रार्थना किया, महाराज इस तरीके से हरकत हो रही है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? तो बोले बस बेटा, राम रावण युद्ध शुरू हो गया, अब रावण मारा जाए, राम का राज्य अभिषेक हुई, तब छुट्टी मिलेगी, बीच में कहीं विराम नहीं है। बेटा भजन जागृत हो गया, इष्ट देव रथी हो गए, तो जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम खड़े हैं, हमारी पुकार श्रद्धा से जहां डोरी लगी, पुकार ऐसी हो कि वो उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, मन की लगाम पकड़ के हमारा संचालन करने लगे, बस उसी दिन से जिसका नाम भजन है वो भजन जागृत हो जाता है। ये सदगुरु के द्वारा ही जागृति है और इस जागृति का नाम है लीला। भगवान इन आंखों से हम देख नहीं सकते, इस विशिष्ट बुद्धि से माप नहीं सकते। दुनिया में बुद्धिक जितना बौद्धिक विकास है उतना ही भला मानव साइंटिस्ट है, दार्शनिक है, लेकिन ईश्वर पथ में बुद्धि का निरोध, स्थित प्रज्ञ प्रतिष्ठित, बुद्धि को समेट के स्थिर कर लो, ऐसे निरोध और हलन चलन रहित संयत बुद्धि के अंतराल में भगवान की लीला प्रकट होती है। बाहर विकास बुद्धि के प्रसारण से, भीतर भगवान में विकास बुद्धि के निरोध से। जहां हल्का सा निरोध हुआ तो भगवान सार संभाल करेंगे, ये करो वो न करो सार संभाल करेंगे, आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे सामने स्वयं, नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। इसी प्रक्रिया का नाम है लीला। ये लीला देखते देखते जहां लीलाधारी का स्पर्श किया, जहां से प्रभु रेले करते हैं उस मूल का स्पर्श किया, चित्त के निरोध और विलय काल में ता धाम की जानत तुम ही हो ही जाई, भगवान तुम्हें जानकर वो तुम ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बच रहता है। ऐसा संभव कैसे? एक उदाहरण प्रस्तुत किया, किशोर शरी मिले सो पावन कैसे, ईश यानी सही अंतर जैसे। एक गिलास गंगा जल, नाम है गिलास भर, गंगा से स्पर्श करवा दो तो बोलो गिलास में गंगा समा गई कि गिलास वाला पानी गंगा में। जो अधिक है उसका प्रवाह रहेगा, कम विलय हो गया। आत्मा आपका जो छिपा हुआ स्वरूप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का विशुद्ध अंश है, ये सदगुरु के द्वारा साधना जागृति, इस देव की प्रेरणा सूत्र से चलते चलते जहां मूल का स्पर्श किया तो कम था खो गया, अधिक है वही शेष बच रहा। ये रास्ता चिंतन से संयम से चलने वाला रास्ता है। कबीर ने इसका बड़ा सटीक वर्णन किया कि बिना पैर का पंथ है विनवस्ती का देश, बिना देह का देव है कहे कबीर संदेश। बिना पैर का पंथ, दुनिया में आपको कहीं जाना है पैरों से चलना होगा, गाड़ी घोड़ा भी स्टार्ट करना होगा, लेकिन ये बिना पैर का पंथ, एक पैर तो आपके शरीर में है किंतु अष्टावक्र भी पागे, लूले लंगड़े अंधे भी हरिहर बाबा अंधे वो भी पागे, पैर है आपके अंतःकरण की चेष्टाएं, मन से इंद्रियों का संयम करके अंतःकरण वृत्तियों बिल्कुल शांत सम स्थिर हो चले, ज्यो ज्यो इनके संयम होता जाएगा त्यों त्यों आपका रास्ता तय होता जाएगा। ये बिना पैर का पंथ, और सर्वथा निरोध चित्त भी जब शांत समाहित हो गया, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, केवल जिस लक्ष्य को देखता लक्ष्य मात्र रह जाए और देखने वाले चित्त का स्वरूप शून्य हो जाए, इसी का नाम है समाधि। उस जब चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया, इसका मतलब चित्त का मन का हिलन डुलन शांत हो गया, पैर खत्म, तो बिना पैर का पंथ है अर्थात इंद्रियों का संयम और मन के संयम के साथ ही रास्ता तय होता है। सर्वथा मन की दौड़ शांत हुई, इसकी गति स्थिर हुई, पहुंच गए। और बिन बस्ती का देश, जहां वहां पहुंचा तो वहां भगवान का एक ऐसा दरबार कि आबादी नहीं बढ़ती। ये नहीं कि भगवान से सैया पे लेटे हैं, बाजू में एक शेष नाग निकल आए उसमें आप भी लेट जाओ, वहां आबादी नहीं बढ़ती, वो व्यापक है। जहां उस मूल का स्पर्श किया तो उसमें समाहित हो गया, उसी भाव को प्राप्त हो गया, आबादी नहीं बढ़ती। सेवक सदा के लिए मिट गया, परमात्मा ही शेष बच रहा, लेकिन जिस स्वरूप से उसने पाया है, जिस शरीर की आकृति से, उस आकृति से सूक्ष्म स्वरूप से सदैव सृष्टि में मृत्यु हो, शरीर की निधन हो जाने के बाद भी वो महापुरुष बना रहता है। भगवान उस स्वरूप से सदा ही मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिसका परिणाम है ये मंदिर। तो क्यों, जहां स्पर्श किया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वही हो गया, सेवक उसमें खो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर कतरा दरिया में गिरा तो फना हो गया, कतरा मिट गया, दरियाई शेष बच रहा। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया, खुद ही माया ही रुकावट थी वो गुम हुई, खुदा शेष बच रहा। तो बिन बस्ती का देश तहां, बिना देह का बिना पैर का पंथ है, बिन बस्ती का देश। और भगवान है कैसे, अनिर्वचनीय है, अमूर्त है, अरूप है, लेकिन अनुभव गम्य है। बिना देह का देव है कहे कबीर संदेश। वहां पहुंच के जो उस स्थिति में पा गया वो है धाम, अचल और स्थिर स्वरूपस्थ हो गया केवल्य पद। तो नाम रूप लीला और धाम, लेकिन नाम जपने में बड़ा बखेड़ा है, राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। मानस में गोस्वामी जी ने एक रहस्य में चौपाई लिख दी कि बारक नाम जपा जग जेऊ, हो ही तरण तारण नर तेऊ। एक बार राम इतना जप लेता है, खुद संसार से तर जाता है और संसार में दूसरों को तारने की शक्ति है तो उस महापुरुष में। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, नर तर ही भव सिंधु अपारा। एक बार राम इतना जप ले, अपार भव सिंधु पार हो जाता है। लेकिन नाम प्राय सभी जपते हैं, बड़ा नियमित जपते हैं। सेठ जी के नाम जपने की कला तो हम घर में जाके देख आए, बढ़िया मंदिर बनाया है घंटों एक आसन से। अयोध्या में हम देखते हैं ऐसे ऐसे महात्मा महापुरुष हैं वहां पर कि रात दिन नाम, किसी ने कुछ पूछा तो राम जी बोले, महाराज भोजन किया तो बोले राम जी। वो जीवन में दूसरा शब्द बोलते ही नहीं, उंगलियों की रगड़ से काट की गुरिया घिस गई, दो एक मालाएं खूंटी में टंग गई, न खुद ही तरे न तारने की क्षमता ही आई। भला वो कौन सा नाम कि बारक नाम जपा जग जेऊ, एक बार राम इतना जप ले, हो ही तरण तारण नर तेऊ। स्वयं तर जाता है भव सिंधु से और दूसरों को तारने की क्षमता आ जाती है, वही है सदगुरु। कैसा है नाम, वास्तव में एक ही नाम को चार श्रेणियों से जपा जाता है। वेखरी मध्यमा पसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए, जैसे राम राम ओम ओम, इस ढंग से उच्चारण करो पास पड़ो सबको सुनाई पड़े, निर्द्वंद उच्चारण करो। ये निर्द्वंद उच्चारण करने की क्षमता काशी वालों में ज्यादा है। क्यों कि उनके मुंह से प्राय निकलाई करती हर हर महादेव। हाँ, बोलने की स्टाइल काशी में है, अयोध्या में है, गांव वाले संकोच करते हैं कुछ। तो वेखरी उसे कहते हैं व्यक्त हो जाए, ओम 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 सब सबको सुनाई पड़ रहा है। दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते जब मन में क्षमता थोड़ी बढ़ जाए तो मध्यमा, मध्यम माने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते, इस ढंग से उच्चारण करो कि पास पड़ोस कोई बैठा हो उसे सुनाई न पड़े। आप उच्चारण अवश्य करो और सुनो भी, ये उच्चारण कंठ से होता है, हल्का सी जीभ का सहारा दो, थोड़ा थोड़ा ओट ले तो कोई खराब नहीं, अच्छा है। वो थोड़ा तेज था, ये थोड़ा आस्ते, उसकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ है। और साधना सूक्ष्म हो गई ती फिर पश्यंती, पश्य माने देखना, पश्यंती वाणी का उतार चढ़ाव श्वास पर है, न तेज जपो ने आप आस्ते, मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो, सारा काम छोड़ के इस देखा करे कि श्वास कब आई कब गई, कितनी रुकी, फिर कब अंदर गई, फिर कितनी रुकी और कब बाहर आई, केवल इस श्वास को देखे तीन चार बार। जब श्वास को देखने में सक्षम हो जाए मन, जब देखने में दो चार बार के बाद जब क्षमता आ जाए, तो आस्ते से चिंतवन से नाम ढाल दो। अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो ओम। श्वास आपके पांव के तलवों में है, हाथ की हथेलियों में, उंगलियों में है, लेकिन श्वास के प्रमुख आने जाने का रास्ता है नासिका से मस्तिष्क, ब्रह्मांड, मेरुदंड से होके नाभि कमल, फिर लौट के उसी रास्ते से वापस। ज्यों ज्यों आप श्वास को देखोगे, श्वास शिथिल शांत होती चली जाएगी। एक मिनट में आप चार बार श्वास लेते हैं स्वाभाविक, एक ही बार ले सकेंगे, इतनी शिथिल पड़ जाएगी। पड़ जाने दो। एक बार श्वास के आने और जाने में आपने दो नाम लिए, और राम 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 करोगे तो 25 ले लोगे। कभी कभी साधक घबरा जाता है कहीं घटी न हो, लेकिन घटी नहीं। वो 24 घंटे राम राम करो, श्वास से एक नाम जपने की क्षमता आ गई तो बराबरी कर लेगा। क्यों? ये हम मन से जपते हैं, और पहले जो जपते थे वो कैसा था? तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये सुमिरन था ही नहीं। अब जो हम श्वास को देखते हैं तो मन से देखते हैं। आने दो, दो ही आने दो। श्वास को देखते देखते जब श्वास अचल स्थिर ठहर जाए, तेल धारावत डोरी लग जाए, एक बार सूरत लगा दो तो रिनक धिनक धुनी अपने से उठे, धुनी प्रवाहित हो जाए। जपे न जपावे अपने से आवे, न तो जपो न मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लगा दी तो डोरी लग गई, बस इसका नाम है अजपा। यह है परावाणी का जाप। हम अजप, अ माने नहीं, जप माने जाप। हम न जपे और जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत लगा दिया तो डोरी लग गई, श्वास एकदम बांस की तरह स्थिर खड़ी हो गई। ओम ओम ख्याली धुनी और मन का वही खुराक हो गई। आज बगैर लगाए मन भाग जाता है वासनाओं में। कितना बढ़िया आसन लगा के मृग छाला बिछा के बैठो, भागा पता नहीं क्या कर रहा है। किंतु यही मन जब वेखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से जब परा का प्रवेश मिल जाता है तो बगैर लगाए लगने लगता है। तब मन की वो खुराक थी, अब मन की ये खुराक है। उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिनहि भजन तजि भावने आना। उस टाइम भगवान उठाएंगे बैठाएंगे, कब संकल्प सही और कब विपरीत वो बताएंगे। इसलिए वो नशा हो जाता है भजन। जिसे नशा चढ़ गया उन्हें भजन छोड़ के दूसरा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। ती परावाणी का जाप। परावाणी की परिपक्व अवस्था काल में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाय, सुरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। जप नितांत आवश्यक है, लेकिन जप मरे कब? जब अजपा जागृत हो जाए। अजपा नितांत आवश्यक है, लेकिन अजपा मरे कब? जब अनहद जागृत हो जाए। आज आप भजन करते हो तो एक सीमा है, हद है कि 10 घंटे 14 घंटे, लेकिन एक सीमा है। लेकिन एक समय ऐसा आता कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब चिंतन धारावाही हो जाता है उस टाइम अनहद, और वहां भगवान बराबर धड़ाधड़ आवाज भी देते हैं, अनहद के शब्द मिलते हैं, उन्हें देखो और लगो। किंतु ये अनहद भी तो रास्ते की स्थिति थी ना। अनहद हूं मरी जाए कब? जब सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। ये मन की दृष्टि शब्द जो श्वास में सुन रहा था उसमें समा जाए और देखने वाला मन सुप्त हो जाए। उस टाइम बारक नाम जपा जग जेव, हो ही तरण तारण नर तेव। उस टाइम अनेक नाम श्वास से खत्म, एक नाम मात्र रह गया मन भी उसमें समाहित ओतप्रोत प्रवाहित हो गया एक नाम। जहां एक नाम की स्थिति आई वो स्वयं पार है और दूसरों को पार करने वाला सदगुरु है। गुरु एक स्थिति है, ये नहीं कि चेला मुड़ते चले जाओ, दक्षिणा लेते चले जाओ। नास्ति तत्वम गुरु परम, जो अविनाशी परम तत्व है वही परम गुरु है। तो ब्रह्मवेता वक्ता सुरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। वो ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हो, साधक के मन की सूरत को पकड़कर साधना पथ पर ले चलते हो, ये सदगुरु के लक्षण है। और केवल मोक्ष की इच्छा रखे ये शिष्य की पहचान है। शिष्य कुछ भी मांग सकता है, लेकिन वो शिष्यों की क्वालिटी है, वो जिन्हें जानना है, जिन्हें प्राप्त करना देखना है, उनकी किस्म है। इसलिए अजपहू मर अनहद हूं मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। काल से परे अकाल पुरुष यदि भगवान को खा लेगा, काल तो आपको भी खा लेगा। अकाल पुरुष हमारे और भगवान के बीच में जो रुकावट है, हमारे मन की तरंगे हैं, वो उस टाइम शांत और शब्द में समा गई सूरत, उस टाइम एक नाम। आज आप नाम जपते हो, नाम भी जपते जा रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ते जा रहे हैं, नाम भी जपते जा रहे हैं, साहब कुछ नाराज है, नाम भी जपते जा रहे हैं, क्या बताएं, कारोबार इस टाइम बड़ा डल चल रहा है, एक न एक बवाल का तांता लगा रहता है। हम एक नाम जपते हैं, जब अनेक नाम पिंड छोड़े तब तो मन के अंतराल में इतने नाम है। तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, चित का पट पसार ही जगत है। विटप मध्य पुतरी का शूत महु कंचुक भी नहीं बनाए, मन में तथा लीन ना ना तनु प्रगटत अवसर पाए। एक वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर, एक टेबल बनाओ चाहे माचिस, एक तंतु में सूत्र में अनंत प्रकार के वस्त्र, चाहे सूट बनाओ चाहे पैरासूट। ठीक इसी प्रकार विदाता की सृष्टि की अनंत योनियां इस मन के अंतराल में विद्यमान है। जब जिसका नंबर आता उसको पिंड रूप में फेंकता रहता है, किंतु वेखरी से मध्यमा नाम वही है। 24 घंटे वेखरी से जाप करो, मध्यमा से एक शब्द उच्चारण की क्षमता आ गई, बराबरी कर लेगा। मध्यमा से 24 घंटे रगड़ करो, पश्यंती को श्वास मन से एक शब्द देखने की क्षमता आ गई, बराबरी कर लेगा। पश्यंती से 24 घंटे रगड़ करो, परावाणी का एक शब्द उच्चारण की क्षमता ही लेबल कर देगा। और इस परावाणी की परिपक्व अवस्था काल में जब सूरत शब्द में समाहित हो गई, मन का निस्वरूप जिस सेकंड शांत हुआ, तत्सन शब्द मात्र रह गया, यह एक नाम। ये एक नाम की अवस्था में जो भी पहुंचा वो भव पार है, पार करने वाला सदगुरु है, तत्वदर्शी है। तो जा सुनाम सुमिरत एक बारा, नर तर ही भव सिंधु अपारा। अपार भव सिंधु से तर जाता है, लेकिन एक बार का अर्थ नहीं कि एक गिन लिया। अनेक नाम पिंड छोड़े, अनेक संकल्पों का क्रम शांत हो जाए, एक शब्द की स्थिति जिस सेकंड आई, दूसरी सेकंड में जो उसकी आड़ में छिपी सत्ता है, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है परम धाम। इसलिए ये हमें बेखरी से ही शुरू करना चाहिए, माला से शुरू करो। भजन करते समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम याद आया करे, शौच जाते पानी पीते नाम याद आया करे। भगवान के भजन के लिए कोई जगह पवित्र नहीं होती, श्रद्धा और समर्पण के साथ याद आया करे। हाँ सुबह शाम बैठ के 20 मिनट आधा घंटा अवश्य समय दो, साफ सुथरी जगह में बैठ के नहा धो के। आस्ते आस्ते, भजन एक नशा है, जिसे नशा उसी को याद आता है। कुछ ही समय में जब आपके और आत्मा के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है माया का, मल आवरण विक्षेप और संस्कारों का, जहां हल्का हुआ, तो हृदय से भगवान वैकुंठ से नहीं आते। वो सबके उरे अंदर वसत जानत भाव कुभाव हृदय से ही प्रेरणा देंगे आपको सोने से जगाएंगे, आपको रास्ता बताएंगे कि ये करो और ये न करो, और भगवान ये भी बता देंगे कि आपके गुरु महाराज कौन।
कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, शत संगति संस्कृति करे अंता।
पुण्य का पुंज प्रत्यक्ष रूप में साथ नहीं देता तब तक संत अथवा सदगुरु नहीं मिलते। नहीं मिलने का अर्थ ये नहीं कि दिखाई नहीं पड़ते, संत सदगुरु नहीं। विश्वनाथ बाबा खुद खड़े होंगे तो दो धक्का हम जरूर देंगे, कौन जुग जमाना आ गया देखत हो, तेरी काट तेरी लीन, कौन कौन वस्त्र चले देखो, नहीं दो आने की लंगोटी नसीब नहीं, भैया मोटान है और कुछ नहीं। कुछ हम जरूर कहेंगे, हमारे पास आंख नहीं उनको देखने की। इसलिए जहां पुण्य प्रत्यक्ष रूप में साथ दिया, तहां संत जिस सिंहासन पर बैठे होंगे, जिस दलदल में लौटते होंगे, या तो आप वहां पहुंच जाओगे अथवा वही आपके पास, वो गुरु और आप चेला हो जाओगे। और नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, मार्गदर्शन होने लगेगा। गुरु महाराज हमारे कहते थे, कभी हमारे मन में स्फुरन नहीं आया कि हम साधु होंगे। गृहस्थी बड़ी सुंदर लग रही थी, दंड बैठक कसरत, 10 गांव में नामजद पहलवान, देवरिया जिला में नशा था तो पहलवानी का, सहसा आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। रात को 8 बजे अंधेर धूप प्रवेश कर गए मंदिर में, वो ऐसा खंडहर मंदिर कि 50 वर्ष से पुजारी उसमें गया ही नहीं था। कंकड़ भी थे, गंदगी भी थी, घूम के अंधेरे में दीवाल थाहते हुए बाहर आ गए। बोले पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है। आकाश से आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज हैं, इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई, जहां झुंझलाहट पैदा हुई तो खांसने की आवाज आई, वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। तुरंत प्रकाश की व्यवस्था किया, सेवा में लग गए। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। इसी अल्प अवधि में साधना का क्रम समझा और भजन में लग गए। गांव से कुछ दूर एक बगीचे में जाके बैठ गए, बैठे ही रह गए, फिर लौट के घर नहीं गए। जब गुरु ही महाराज है तो बाकी क्या। ये गुरु महाराज को तीसरी आकाशवाणी थी। महाराज जी ने बताया कि उन गुरु महाराज को हमने पहले भी 50 बार देखा था। लोग कहते थे वो पगला जा रहा है, हम भी जानते थे पागल है, किंतु भगवान ने आकाशवाणी दिया कि तुम्हारे गुरु महाराज है। वास्तव में वो महापुरुष थे, अंतर्यामी थे। जहां उन गुरु महाराज के अनुसार साधना पकड़ी, 4 महीने के अंदर हृदय में स्वरूप जागृत हो गया, इष्ट देव रथी हो गए, पूर्व जन्मों की रील सामने आके प्रकट हो गई। हमने पूछा महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुआ, सबको तो नहीं होती, हमें भी नहीं हुआ। तो बोले हो इस शंका मोहू के रही। महाराज अंगूठा छाप थे, इस शंका मोहू के रही। जहां मुझे शंका हुई भगवान ने बताया पिछले 7 जन्म का रिकॉर्ड, कि मैं पिछले 7 जन्म से साधु हूं। कहीं तिलक लगाए हूं, कहीं विभूति पोते हूं, कहीं संतों के बीच में कमंडल लेके खड़ा हूं। 4 जन्म तो झूठे खड़ा हूं बीच में, लेकिन हूं सच्चा साधु, संयम में कोई कमी नहीं। हम बोले महाराज झूठे का मतलब? बोले योग साधना जागृत नहीं है, राम राम सब जप रहा हूं, भजन जागृत नहीं है। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूं, जैसा कि होना चाहिए एक संत को होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, इष्ट देव हृदय में रथी थे, पिछले जन्म में पार लग गई, किंतु 2 इच्छा रह गई मन में। एक तो इस शादी विवाह क्या होता है, दूसरी हमारी इच्छा थी गांजा पीने की, पिया कभी नहीं, मन में एक कुतर्क था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। थोड़े ही समय में शादी विवाह करके दिखा सुना के भगवान ने कहा देख ये पाप और ये पुण्य, वो गुरु महाराज और ये रास्ता। और 4 महीने में पिछले जन्म में जहां साधन छूटा था, वहीं से जू का त्यों जैसे धरी कोई अपना गड़ा माल मिल जाए, तुरंत प्राप्त हो गया। इसलिए गृह त्याग के पश्चात महाराज जी को पूर्णत्व ईश्वर दर्शन और स्थिति प्राप्त करने में केवल 8 साल लगा, कोई विशेष नहीं। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति, अनेक जन्मों के परिणाम में शिथिल प्रयत्न वाला साधक वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम। इसलिए ऐसा न समझे कि हम साधक ही नहीं, साधक की पहचान केवल इतनी कि प्रथम शबरी ने पूछा भगवान कि अधम से अधम अधम यति नारी, एक तो मैं अधम कोल किरात, उससे भी अधम मैं नारी, उससे भी अधम मैं मति मंद। राम ने कहा से शबरी कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति कर नाता, मैं केवल भक्ति का रिश्ता जानता हूं। और फिर भक्ति के पॉइंट गिनाए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यदि संतों का संग है तो भक्ति है आपके पास। संतों का ही संग है तो कुछ मिलेगा, वो कथा देंगे, राम है क्या, राम कहता कि रहते कहाँ हैं, राम को खोजें कैसे। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और कथा प्रसंग का जब सारांश निकलेगा तो गुरु महाराज गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहीं कपट तजी गान। क्रमशः 9 पॉइंट बताए, अंत में भगवान राम ने कहा कि नव महु एक जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। नवमों से एक जिसके पास है वो मुझे परम प्रिय है, कुछ नहीं संत का संगी है, केवल कथा ही है, गुरु की सेवा ही है, एक भी है, एक दो तीन है तब भी पर्याप्त। और शबरी संपूर्ण प्रकार से भक्ति तुम्हारे पास सुदृढ़ है तो मेरे धाम जाओ। शबरी के जूठन बेरी खाए कि जो भगवान में स्थिति वाला संत है उसमें और भगवान में अंतर ही नहीं, उसकी जूठन भगवान की जूठन और भगवान की उसकी। एक बार रुक्मणी को गर्भ हो गया, गर्भ माने अहंकार, वाह मेरे जैसा भक्त कोई हो ही नहीं सकता संसार में, भगवान तो गर्भ प्रहारी है। कहीं से इस कमी का सूत्र नारद को लग गया। नारद ऐसे जगह पर, वो नारद हाजिर हो ही जाया करते थे, उनका स्वभाव था, उन्हें खिलवाड़ चाहिए। सीधे पहुंचे लक्ष्मण रुक्मणी जी के महल में, बोले रुक्मणी जी आप व्यर्थ ही ऐंठी गुंठी घूमती हैं, भगवान कृष्ण के हृदय में, प्रभु के हृदय में जो स्थान गोपियों का है उसके मुकाबले में आप पटरानियों का कोई स्थान नहीं, आप 10% भी नहीं उनके मुकाबले में। तो रुक्मणी जी बोली नहीं नारद जी, वो अहिर की छोरियां गंवार ग्वालिन, मैं मूर्धा अभिषिक्त नरेश भीष्मक की कन्या, यदि तपस्या ही न होती तो भला वो जाते क्यों, हमें लेके आते क्यों। तो नारद बोले रुक्मणी जी कुछ भी कहो, लेकिन सभा सोसाइटी में, इष्ट मित्रों में जब देखो तब गोपियां गोपियां गोपियों का नाम लेते लेते कृष्ण का हृदय भर आता है, आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन आपका नाम हमने कभी सुना नहीं। बस चाबी तो भर गई, इतना काफी था। रुक्मणी जी आ गई ताव में, बोले अरे इतना बड़ा धोखा, तुरंत हार इधर फेंका, दुपट्टा उधर फेंका, बाल छित्रा के, पायल उधर झटक दिया और सनसना के चली कोप भवन की ओर। आप लोगों घर में कोई रुष्ट होता है तो अपना क्या भें भें करके कोठरी में रोने लगता है, और राजा महाराजाओं के यहाँ रुष्ट होके भें भें रोए लगे तो राजकाज चौपट हो जाएगा। यदि तुम्हें नाराजगी प्रकट करनी है तो चले जाओ वो कोप भवन, वहां रुदन करो। कोप भवन की ओर बड़ी भगवान की निगाह पड़ गई। भगवान कृष्ण ने पूछा अरे अजीब दृश्य है, कहीं नारद से तो भेंट नहीं हो गई। तो बोले हाँ भगवान, आज नारद जी रुक्मणी के ही महल में अतिथि थे। बोले तब जल्दी करो, 2-4 रजाई लाओ। रजाई ओढ़ के लगे कृष्ण कांख में बुरी तरह, सन्निपात का रोगी लगे बड़बड़ाने उटंग पटंग, हाय मौत आ गई, अंतिम समय। तब वो सब घेर लिया, दवाई वैद डॉक्टर फैल। तो रुक्मणी ने सोचा ये नखड़ा तिला करके जिन्हें मनाना था वो तो खुद परेशान है, पहले वो ठीक हो जाए तब कोप भवन अटेंड करूंगी। वो भी चली आई। भागते हुए नारद भी आगे बोले, प्रभु हुआ क्या? बोले, अरे नारद तुम बड़े समय से आगे, भला भेंट वेट हो गई? अंतिम समय है नारद। बोले, प्रभु ऐसा न कहें कोई उपाय? बोले, इलाज तो नहीं है संसार में। बोले, अरे ऐसा न कहें कुछ तो बोले, है लेकिन अति अति दुष्कर है नारद, हमारे तकदीर में ऐसा कहाँ लिखा है। बोले, आप हुक्म तो करें। तो बोले, मुझ में स्नेह रखने वाली कोई हमारी रानी अथवा कोई अपने चरणों की पवित्र धूल दे दे, वो मैं सिर पे मल लूं, उस पुण्य से प्राण बच सकते हैं, दवाई से तो नहीं। ये असाध्य रोग है, बंगाल वाला मस्तिष्क ज्वर और लगे कांपने। तब नारद तुरंत घूम पड़े रुक्मणी की ओर, बोले, जल्दी करो, चरण धूली दो, प्राण जाना चाहते हैं। तो रुक्मणी जी पीछे हट गई। बोले, ये हमारे आराध्य हैं, इनकी चरण धूल हमारे सिर पर, मैं अपनी क्षुद्र मिट्टी इनके सिर पर कैसे डाल दूं? तो बोले, अरे तुहार वेदव्य खेना पड़ेगा, प्राण संकट में अभी अभी जा रहे, वो बच जाएंगे। बोले नारद, समाज क्या कहेगा? अब पांव पे मिट्टी झाड़ने लगी, मेरा परलोक नष्ट हो जाएगा। तो बोले, अरे तुहार परलोक ये भी मरा चाहते, फिर रणापा खे का पड़ी? तो बोले नारद जी, भाग्य का लिखा तो भोगना ही पड़ता, उसके लिए कोई क्या करेगा। आठवां पटरानी पीछे हट गई। कृष्ण और अधीर होके लुढ़क गए। आज 5 मिनट बेहोशी से फिर उठे। बोले, अरे नारद बिंद्रावन चले जाओ, शायद गोपियों में से किसी को मुझ पर तरस आ जाए। सीधे नारद भागे बिंद्रावन, करील के कुंजों में, राधिका के संरक्षण में, कृष्ण के वीरह में गोपियां कीर्तन कर रही थी। नारद को देखा तो उठ के खड़ी हो गई। बोले, देव ऋषि आप तो भ्रमणशील हैं, कहीं हमारे कन्हैया को देखा? तो बोले, हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ, देखा तो। बोले, कैसे हैं? बोले, अभी तो ठीक हैं, लेकिन लौटने पर भेंट हो या न हो कह नहीं सकता। तो बोले, अरे फालतू बात नहीं नारद जी, कोई सेवा हो तो बताइए। गोपियों का भाव था, भगवान कहीं मरते हैं, कोई लीला होगी, बचपन से वो लीला ही तो देखत रही हैं, उन्हें ज्ञान था। बोले, अरे नारद जी फालतू बात नहीं, कोई सेवा हो तो कृपा करके बताएं। बोले, चरण धूली मांगा है, चरण धूल सिर पे मल लेंगे तो उससे वो जी सकते हैं और इलाज तो खत्म उस पुण्य से। तुरंत सब गोपियां लगी पांव पीटने, रमण रेती में लगी पांव पीटने, 50 इकट्ठी हो गई, धड़ाधड़ लगी पांव पीटने कि बगैर चरण छुआ कहीं कण न चला जाए, नहीं अन्यथा इन महापुरुष को मिट्टी ढोना पड़ेगा, हमें पाप लगेगा, आज्ञा पालन में कोई पाप नहीं। चिनिया बोरा भरा लेपट के सब ने उठा के नारद के सिर पे रख दिया। बोले, नारद जी जल्दी जाओ। तो बोले, अरे वो सिर पे रखेंगे, नारदी तो ठहरा, तुम्हारा परलोक नष्ट हो सकता है, तुम नरक में भोग सकती हो। बोले, नारद जी समय न नष्ट करें, वो जिए वो खुशी रहें, हम अनंत काल तक नरक में रहें हमें मंजूर है, तुम जल्दी जाओ। बातों में जितना समय नष्ट करते उतना ही प्रभु को कष्ट होगा। अब कांखत कांखत नारद चले, कहाँ बीना ढोने वाले बाबा जी और चिनिया बोरा से हो गई भेंट, पसीने में तर गर्दन हो गई टेढ़ी, लिजा के बोरा पटका। बोले, ले अपन चरण रज। भगवान उठ के बैठ गए, सारी चरण रज उठा के अपने सिर पे डाल दिया, नहा लिए। बोले, नारद ये रुक्मणी इत्यादि रानियों का और गोपियों का कौन मुकाबला? गोपियां मेरी आत्मा है, मैं उनमें हूं, वो मुझ में है, वो मेरे स्वरूप हैं, मेरी चरण रज उनकी चरण रज और उनकी चरण रज मेरी, वो मुझसे अभिन्न स्थित है। इनको तो परलोक की चिंता है, हो सकता है एकाध जन्म और लेना पड़े इनको, भला गोपियों का इन पटरानियों का कौन मुकाबला? उस दिन से गर्मी ठंडी हो गई रुक्मणी जी की, पहले अब भक्त शिरोमणि बन के टहला करत रही, खाली सिंगार करके वो दिन से चाय पानी देने लगी, गृहस्थी सुधर गई। इसलिए भक्त बना नहीं जाता, भगवान यदि कहते हैं साधु तो आप साधु हो, भक्त हो,